नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केजी पन्नायक रिटायर्ड ने ईटानगर स्थित लोकभवन में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने क्षेत्र की नदियों, जलीय जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश में 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सह किसान एवं उद्यमी सम्मेलन का आयोजन CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईटानगर ब्रांच में किया गया। ICAR केंद्रीय शीतजल मत्स्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग और सारसों समिति के सहयोग से दुर्लभ मछली प्रजाति शिजोफाइगोप्सिस वेरेली पहली बार तवांग में दर्ज की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने कुरुंकुमे जिले के कातुक और रुबा गांवों के स्थानीय ग्रामीणों को कामला नदी में अचानक आई बाढ़ के दौरान अदम्य साहस और निस्वार्थ सहायता के लिए सम्मानित किया। 21वीं तादातांग राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम चरण में खिताबी मुकाबले में 9 टीमें आमने सामने होंगी। प्रतियोगिता के माध्यम से संतोष ट्रॉफी के लिए अरुणाचल प्रदेश की टीम में खिलाड़ियों का चयन। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी में फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जारी है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता की उसकी प्रमुख प्राथमिकताएं रही है।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत ने ब्रिक्स सहयोग को सीधे आम लोगों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि इस दृष्टिकोण के तहत देश भर में 350 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को देश के करीब 30 शहरों में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कोशिश रही है कि ब्रिक्स सहयोग का लाभ केवल सरकारों तक सीमित न रहे बल्कि इसका सीधा जुड़ाव आम नागरिकों और मानवता से भी व्यापक हितों से जुड़े सके। प्रधानमंत्री ने मुश्किल समय में मदद के लिए संबंधित देशों के समुद्री अधिकारियों और राजनयिक मिशनों को जोड़ने के मकसद से सी फोर्सेस इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की भी प्रस्ताव रखा है। श्री मोदी ने कहा है कि समुद्री नाविक वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, फिर भी मुश्किल समय में उन्हें अक्सर जरूरी मदद नहीं मिल पाता।
सी फेरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं। इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सुधार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि UNSC में सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता और इस मामले पर बातचीत को एक निश्चित समय सीमा और स्पष्ट नतीजे से जोड़ना चाहिए।
रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देशों के बीच एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स सदस्य एक दूसरे को सम्मान करते हैं और आम सहमति से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समूह किसी के खिलाफ काम नहीं करता रहा है, बल्कि सभी के साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह समूह इस वर्ष अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रही है।
अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान आपसू प्रतिनिधिमंडल ने तागिन जनजाति के सामुदायिक नेताओं के साथ मिलकर राज्यपाल को ताक्सिंग मुद्दे से जुड़ी अपनी चिंताओं और आशंकाओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र और वहां के लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न विषयों पर भी अपने विचार साझा किए। राज्यपाल आश्वासन दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक गाँव और नागरिक के हित तथा कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी गांव पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। राज्यपाल ने राष्ट्र के प्रत्येक इंच भूभाग की सुरक्षा के लिए भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास राष्ट्र प्राथमिकताएं हैं और इन सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग राष्ट्र की शक्ति और दृढ़ता की पहली पंक्ति में शामिल है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में ताकोनमू में आयोजित दूसरी नदी उत्सव के समापन दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि क्षेत्र की नदियों, जलीय जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के लिए सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि नदियां और जलधाराएं केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि ऐसे जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जो जीवन को सहारा देते हैं और क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति तथा परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। नदी उत्सव नदियों, जलीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं तथा समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित एक पहल है। अरुणाचल प्रदेश में 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सह किसान एवं उद्यमी सम्मेलन का आयोजन CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईटानगर ब्रांच जी सेक्टर नाहरलगन में किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गैब्रियल डिवांगसू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती विषय पर एक विशेष तकनीकी सत्र आयोजित करते हुए किसानों, उद्यमियों, प्रतिभागियों और आमंत्रित अतिथियों के साथ संवाद सत्र का आयोजन भी किया गया। ICAR केंद्र शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग और शार्सो समिति के सहयोग से दुर्लभ मछली प्रजाति शिजो पाइगोप्सिस वेडेली की पहली बार तवांग में एक प्राकृतिक झील में दर्ज किया गया है। ये झील समुद्र तल से लगभग 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए कहा है कि ये खोज भारत की मीठे पानी की जैव विविधता में योगदान देते हुए इस दुर्लभ हिमालयी मछली के ज्ञात के क्षेत्र में विस्तार करती है। इससे पहले इस प्रजाति को तिब्बत और चीन की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दर्ज किया गया था। श्री मेन ने कहा है कि इस तरह की खोज हमें ये याद दिलाती है कि अरुणाचल प्रदेश के समृद्ध प्राकृतिक विरासत में अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खोजने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए निरंतर अनुसंधान और संरक्षण बेहद जरूरी है। उप मुख्यमंत्री ने उच्च हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की अनूठी जैव विविधता को दर्ज करने के प्रयासों के लिए वैज्ञानिकों, मत्स्य विभाग और शार्सो समिति की सराहना भी की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने कुरुंकुमे जिले के कातुक और रूबा गांव के स्थानीय ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने गत 13 जुलाई 2026 को कामला नदी में अचानक आए बाढ़ के दौरान अदम्य साहस, मानवीय भावना और निस्वार्थ सहायता का परिचय दिया। उनके साहस, समर्पण और बहुमूल्य सहायता के सम्मान में कातुक और रूबा गांव के कुल 11 ग्रामीणों को दामिन सर्कल के खूरी में आयोजित समारोह में ITBP महानिदेशक का प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से रुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने एक एक गोल किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।